Jaya, 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 Ja ये ममत्व जो है ये हमें संसार में बांध के रख रहा है। तो ममत्व की भावना हमें भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करनी चाहिए और कृष्ण मेरे हैं ऐसी भावना का अनुशीलन करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान की शुरुआत में भक्त ये जान लेता है कि मैं कृष्ण का हूँ, इसको तदीय कहते हैं, और आगे चल के ममत्व की भावना प्रकट होती है जिसमें भक्त अपने आप को भगवान का ही मालिक समझता है या भगवान को ही अपनी संपत्ति मान लेता है, और ये सबसे बड़ा पुरस्कार उसके जीवन में है। तो भगवान देखते हैं कि ये भक्त ये इतना आगे बढ़ चुका है भक्ति के मार्ग में, संसार के प्रति बिल्कुल प्रभुत्व की भावना नहीं जमा कर रख रहा है, सब कुछ त्याग दिया है उसने, भले वो बाह्य रूप से इन चीजों के बीच में क्यों ना हो, फिर भी अपने हृदय से अपने मन से उसने इन चीजों के ऊपर प्रभुत्व की भावना को त्याग दिया है। तो भगवान इतने आभारी हो जाते हैं ऐसे भक्त के ऊपर कि वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने सब कुछ त्याग दिया है, इसके पास कुछ नहीं है, तो मैं अपने आप को इसके हवाले कर देता हूं। तो इस संसार के थोड़े बहुत छोटी छोटी चीजों को त्याग कर, थोड़े करोड़ों रुपए को त्याग कर, थोड़े और यह संसार का भोग को त्याग कर, हमें क्या मिलता है? भगवान कृष्ण स्वयं मिल जाते हैं, और यही भक्त की संपत्ति होती है, भगवान ही उसकी संपत्ति हो जाते हैं। तो जो निर्ममह हो जाता है इस संसार के प्रति, वो भगवान को ममह कह देता है कि आप मेरे हैं। तो ऐसी भावना भगवान कृष्ण को बड़ा प्रसन्न करता है। तो इसके बाद अब आज से हम चर्चा शुरू करने वाले हैं निरहंकार है, और उसके बाद सम दुख सुख है, और अंत में शमी, और अगले रविवार को 14वें श्लोक की चर्चा करेंगे। तो आइए इस श्लोक का पाठ हम कर लेते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी अद्वेष्टा
सर्वभूतानां
मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी
सुखक्षमी।
श्री प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जैसे दोनों श्लोकों का अनुवाद उन्होंने एक साथ में दिया है, 13 और 14, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख से समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझसे मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। निरहंकार है, जिसमें कोई अहंकार नहीं है। अहंकार क्या चीज है? जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो ये मिथ्या अहंकार कहलाता है। या अपना संबंध हम शरीर से संबंधित वस्तुओं के साथ जोड़ देते हैं, इसे भी मिथ्या अहंकार कहते हैं। जब हम शारीरिक भावना में रहते हैं तो हम ये नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, जो कि भगवद गीता का प्राथमिक ज्ञान है। हम अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर के विकास को ही अपनी प्रगति या अपने ही विकास समझते हैं। यह है अहंकार की वृत्ति। और अहंकार की भावना जब और तीव्र हो जाती है तो व्यक्ति अपने सपने को बढ़ाते जाता है और विस्तार करते जाता है। इस शरीर के विकास के लिए और भी चाहता है और ऐसे अपने आप के बारे में बहुत ऊंचा समझने लगता है। और इस प्रकार से आगे चलते चलते उसका आत्मज्ञान पूरी तरह से ढक जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में जब सुखदेव गोस्वामी वृंदावन के वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं तो मिथ्या अहंकार का वो एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब चांद का उदय होता है तो कभी कभी बादल आके चांद की रोशनी को ढक देते हैं और उस समय हम चांद को नहीं देख सकते, केवल बादलों को देख सकते हैं। वैसे यदि चांद नहीं होता तो बादलों को भी नहीं देख सकते, क्योंकि चांद बादलों के पीछे है और बादल चांद की रोशनी को ढक रहे हैं। उसी रोशनी से जिसको कि बादल ढक रहे हैं, बादल भी प्रकाशित हो जाते हैं। यदि चांद की रोशनी पीछे नहीं होती तो बादलों को भी हम कैसे देख सकते थे? घोर अंधकार में बादल भी नहीं दिखाई जा सकते। तो चांद की रोशनी पीछे होने के कारण बादल जो है वो थोड़े बहुत प्रकाशित हो जाते हैं और थोड़ी बहुत प्रकाश का विस्तार भी यहाँ पर पृथ्वी पर हो जाता है। और हो सकता है कोई यह भी सोचे कि ये बादलों के कारण यहाँ प्रकाश पृथ्वी पर फैला हुआ है, परंतु वास्तव में गहराई पे विश्लेषण करने से पता चल जाएगा कि ये प्रकाश बादलों का नहीं है, ये चांद का प्रकाश है। वास्तव में बादल तो चांद के प्रकाश को ढक रहे हैं और पूरी तरह से ढक नहीं पा रहे हैं। चांद की रोशनी इतनी ज्यादा है कि स्वयं बादल ही प्रकाशित हो उठते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा की जो चेतना है, जो कि शुद्ध है, जो कि बहुत तीव्र है, बहुत प्रभावशाली है, वो मिथ्या अहंकार के कारण ढक गई है। और मिथ्या अहंकार से व्यक्ति भौतिक चेतना में आता है, अपने आप को शरीर आदि समझता है। शुद्ध चेतना तो आत्मा की है, परंतु यही शुद्ध चेतना जब मिथ्या अहंकार के द्वारा ढक दी जाती है या मिथ्या अहंकार के माध्यम से दिखाई पड़ती है बाहर की दुनिया में, तो वो भौतिक चेतना हो जाती है। कभी कभी भौतिक चेतना में प्रेरित होकर व्यक्ति सोचता है कि ये संसार बहुत सुखमय है, यह संसार एक भोग्य स्थान है, यह संसार को भोग करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, और ऐसे भोग के कार्यों में बड़ा प्रेरित होकर बहुत ही चेतनाग्रस्त व्यक्ति बहुत क्रियाशील रहता है। परंतु वो नहीं जानता कि ये जो चेतना है जो कि उसे इतना प्रेरित कर रहा है और उसे ये सोचने के लिए प्रभावित कर रहा है कि मैं सुखी हूं, वो तो केवल एक प्रतिबिंब मात्र है। मिथ्या अहंकार के कारण चेतना जो सच्ची चेतना है आत्मा की, वो ढक गई है। यदि वो बाधक जो वस्तु है मिथ्या अहंकार, वो यदि रास्ते से हटा दिया जाए तो हम समझ सकते हैं कि आत्मा की चेतना कितनी तेजस्वी होगी, कितना प्रकाशित हो जाएगा व्यक्ति का अस्तित्व। जब ढकी हुई रोशनी इतनी ज्यादा होती है तो जब बादल चांद के सामने से खुल जाएंगे, हट जाएंगे, तो कितनी ज्यादा रोशनी होगी। तो जब मिथ्या अहंकार से हम प्रभावित होकर भी इतने क्रियाशील होते हैं और सुख के पीछे भागते रहते हैं, तो कल्पना कीजिए जब मिथ्या अहंकार का पर्दा हट जाएगा आत्मा के सामने से, तो व्यक्ति की चेतना कैसे खिल उठेगी, व्यक्ति कितना प्रसन्न हो जाएगा। तो भौतिक चेतना में व्यक्ति बुद्धि के कार्य में लगा रहता है और मिथ्या अहंकार के प्रभाव से मुक्त होकर व्यक्ति भगवान की सेवा करने लगता है और ऐसे कार्यों को करना बंद कर देता है जो वास्तव में उसके दुख के कारण है। मिथ्या अहंकार के प्रभाव में वो सोचता है कि ये सुख के कारण है, परंतु वास्तव में ये दुख के कारण है। तो इस सत्य को वो तब समझ सकता है जब वो मिथ्या अहंकार के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त शारीरिक भावना से परे हो जाता है, इसीलिए वो कभी भी संसार के वस्तु में ग्रहण नहीं करता है, नहीं ज्यादा वो उद्यम करता है इन चीजों को प्राप्त करने के लिए। अहंकार ग्रस्त व्यक्ति अत्याहार और प्रयास करता है। अत्याहार का मतलब है कि धन संग्रह के लिए, भोजन खाने के लिए और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत ज्यादा उद्यम करता है। रघुपाल जी उपदेशामृत में कहते हैं कि अत्याहार और प्रयास का तात्पर्य यही है कि भौतिक चेतना से ग्रस्त व्यक्ति अत्यधिक उद्यम करता है उन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो भक्त अपने जीवन को बहुत सरल बना देता है और अनावश्यक और अनिच्छित चीजों को प्राप्त, चीजों के प्राप्ति के लिए अपने शुद्ध चेतना को बिगाड़ नहीं देता है। इसलिए सरल जीवन और ऊंचे विचार, ऐसे भक्त का जीवन होता है। और अपने व्यवहार में भी वो अन्यों के साथ बड़े नम्रता से पेश आता है, कभी ऐसे दिखाता नहीं है और सोचता भी नहीं है कि मैं कुछ हूं। जब व्यक्ति अपने बारे में कुछ ऊंचा सोचता है, भक्ति अपने अच्छे गुणों के बारे में, व्यक्ति अपने अच्छे गुणों के बारे में सोचता है, तब हमें समझना चाहिए कि वो मिथ्या अहंकार का शिकार हो चुका है। तो मिथ्या अहंकार से मुक्त होना अर्थात निरहंकार होना, इसका मतलब है व्यक्ति को नम्र होना चाहिए। और सच्चे भक्तों में हम यही देखते हैं, जैसे कि पहले की चर्चा में हम अद्वेष्टा आदि की चर्चा में देख रहे थे, रूप और सनातन गोस्वामी इतने नम्र थे कि चैतन्य महाप्रभु का हृदय पूरी तरह से पिघल गया उनकी नम्रता को देखकर। हालांकि रूप और सनातन गोस्वामी इतने बड़े व्यक्ति थे, वो मंत्री थे, और वास्तव में देखा जाता है कि जो बड़े पद में होते हैं वो नम्र नहीं हो सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है किसी ऊंचे पद में स्थित एक व्यक्ति को नम्र होना, फिर भी रूप और सनातन गोस्वामी बहुत ही नम्र थे और चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी पूरी कृपा रूप और सनातन गोस्वामी के ऊपर प्रदान कर दी। तो भक्त हमेशा निरहंकार होते हैं। केशव कश्मीरी जो कि एक बहुत बड़े पंडित थे, न्याय के, व्याकरण के, अलंकार आदि के, संस्कृत भाषा के, वो जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आए बात करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार है। उसकी विद्वत्ता से डर के नवद्वीप के जितने भी बड़े बड़े पंडित थे वो कोई न कोई बहाना बनाकर नवद्वीप छोड़ के चले गए, क्योंकि वो केशव कश्मीरी का सामना नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि केशव कश्मीरी इतने बुद्धिमान हैं और वाद विवाद में इतने प्रवीण हैं कि जरूर हमको हरा देंगे। परंतु निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आसानी से केशव कश्मीरी को हरा दिया। जब केशव कश्मीरी के बारे में महाप्रभु ने सुना था तो उनके शिष्यों ने, उनके विद्यार्थियों ने उनको बताया था कि केशव कश्मीरी कितने बड़े पंडित हैं। और उस समय महाप्रभु ने कहा था कि देखो, सच्चे ज्ञान का लक्षण है नम्रता। जो फलवंत वृक्ष होता है, जो जिसके शाखाओं में वृक्ष, जो शाखाओं में फल भरे पड़े हैं, और जो नम्र व्यक्ति होता है जिसके ऊपर सद्गुणों का भार है, दोनों भी झुकते हैं। सही है ना? एक बहुत बड़ा वृक्ष जिसमें बहुत सारे आम हैं, कोई दूसरे फल हैं, फलों के वजन के कारण उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे अच्छे गुण है, जो सद्गुणों से संपन्न है, वो गुणों का भार जो है इतना अच्छा होता है कि वो आदमी को नम्र बना देता है और वो झुक जाता है सबके सामने। परंतु जिसके अंदर दुर्गुणों का भार है वो झुकता नहीं है और अपने आप के बारे में उसके बहुत बड़े बड़े विचार होने लगते हैं। तो महाप्रभु कहने लगे कि यदि केशव कश्मीरी के पास वास्तव में ज्ञान है तो वो नम्र रहेगा, परंतु नम्र नहीं है, प्रतिष्ठा के पीछे वो भाग रहा है। इसका मतलब है कि अहंकार से मुक्त नहीं हुआ, वो सच्चा ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। इसे भगवान को प्रसन्न करना है तो हमारे व्यवहार में भी हमें नम्र होना चाहिए, प्रतिष्ठा आदि के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सम दुख सुख, कि सुख और दुख में ऐसे जो महान भक्त होते हैं वो समान दृष्टि से देखते हैं दोनों परिस्थितियों को। अनुकूल परिस्थितियों में अति सुख के कारण खुश नहीं होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जो दुख होता है उससे विचलित नहीं होते हैं, समान समभाव रखते हैं सुख और दुख में। ये क्यों संभव है? क्योंकि वो निराहंकार है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और जितना इस शरीर से हम लगाव बनाए रखते हैं उतना ही हमारे जीवन में इन दोनों द्वंद्वों से हम ग्रस्त हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्यास्ताम दीक्षस्य भारत। कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से इस दुनिया में गर्मी का मौसम आता है और जाता है, फिर जाड़े का मौसम आता है और जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार में सुख आते हैं और चले जाते हैं, दुख भी आते हैं चले जाते हैं। इसलिए हमें दोनों को सहन करने के लिए सीखना चाहिए, और ऐसे जो सहनशील व्यक्ति बन जाता है तो इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए वो योग्य हो जाता है। अहंकार के प्रभाव में रहने वाला व्यक्ति क्या सोचता है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता इति मन्यते। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपने आप को कर्ता समझ लेता है अपने कार्यों के फल से बहुत आसक्त होकर केवल सुख चाहता है, और जब सुख नहीं मिलता तो बहुत विचलित हो जाता है, जब दुख मिलता है तो और भी ज्यादा विचलित हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति निरहंकार है वो सुख और दुख में समभाव रखता है, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि यदि हमें दुख से मुक्त होना है तो शारीरिक भावना से भी मुक्त होना है। श्रीमद् भागवत में राजा चित्रकेतु की कहानी वर्णित है। राजा चित्रकेतु की कई रानियां थीं, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए राजा चित्रकेतु बड़े उदास रहा करते थे। एक बार अंगिरा मुनि, जो कि बहुत बड़े ऋषि थे, राजा चित्रकेतु के दरबार में आए और राजा के उदास चेहरे को देखकर बोलने लगे कि अरे राजन, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारी प्रजा तुमसे बहुत प्रेम करती है और धन भी असीमित है, बहुत बड़ा राज्य है, तो क्या दुख का कारण है तुम्हारे लिए? तो राजा कहने लगे कि जब कोई व्यक्ति भूखा होता है, इसे सुगंधित फूल का माला यदि पहना है तो क्या फायदा? आप समझ रहे हैं, जब आदमी भूखा होता है तो उसको क्या चाहिए होता है? भोजन चाहिए होता है। भूखे आदमी को आप अच्छे कपड़े दे दें, फूल की माला पहना दें, ऊंचे मंच पर बिठाएं, आदर सत्कार करें, क्या लाभ होगा? जब तक उसे भोजन नहीं मिलेगा वो दुखी रहेगा। वो कहने लगे कि मेरे पास अतुलनीय संपत्ति है, मेरे पास प्रजा है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज मेरे पास नहीं है, मुझे कोई पुत्र नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं बहुत पीड़ित अवस्था में हूं। अब आगे मेरा राज्य कौन चलाएगा, अब आगे कैसे होगा? तो आप बड़े ऋषि हैं, तो आप ऐसी कुछ व्यवस्था करें जिससे कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो अंगिरा मुनि ने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ का जो फल था वो खीर था, वो उन्होंने राजा की एक रानी थी कृतज्ञति उनको पिला दिया, और थोड़े ही देर में पता चला कि कृतज्ञति महारानी गर्भवती हैं। तो राजा बड़े आनंदित हो गए और कृतज्ञति महारानी की ओर अपना सारा स्नेह डालने लगे, और जो दूसरी रानियां थी वो तो उनके प्रति लापरवाही करने लगे राजा। थोड़े दिनों बाद जब एक लड़की का एक पुत्र का जन्म हुआ तो महाराज चित्रकेतु और महारानी कृतज्ञति इनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही, दोनों इतने खुश हुए कि प्राय पागल हो गए, और ज्यादा से ज्यादा राजा केवल इस रानी के ऊपर ध्यान देने लगे और अन्य रानियां जो हैं वो बहुत दुखी हो गई। उनका दुख उनका द्वेष इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया। उन्होंने कहा कि ये बच्चा ही हमारे दुख का कारण है, इस बच्चे के कारण ही राजा हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बच्चे को विष पिलाया और जान से मार डाला। जब महारानी कृतज्ञति ने देखा कि मेरा बच्चा मर गया है तो वो चीख चीख कर रोने लगी, बेहोश होकर वहां गिर पड़ी, फिर से होश में आ गई, अपने सीनों को बार बार पीटते रोते चिल्लाते एक पागल व्यक्ति की तरह वो बात करने लगी, अपने बच्चे से कहने लगी कि हे पुत्र, तुम कहाँ चले गए? देखो अभी तुम्हारे मित्र तुम्हारी राह देख रहे हैं खेलने के लिए, अब तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम्हें भोजन भी लेना है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी राह देख रही हूँ, उठो जल्दी से। तब तक खबर राजा चित्रकेतु को पहुंच गई। राजा चित्रकेतु भागते हुए यहाँ पर पहुंच गए, वो भी पागल हो गए दुख के मारे, वो भी बेहोश होकर गिर पड़े, फिर से होश आता वो भी जोर जोर से फूट फूट कर रो पड़ते, और इस प्रकार से दोनों राजा और रानी का दुख देखकर सारी प्रजा भी दुखी हो गई। प्रजा ने सोचा कि इतने समय के बाद राजा को पुत्र हुआ परंतु अब देखो भाग्य कितना क्रूर है कि इस बच्चे को वो लेकर यहां से महारानी कृतज्ञति भाग्य को कोसने लगी कि आपकी तरह है कोई क्रूर व्यक्ति नहीं है, आपने छोटे बच्चे को हमसे छीन लिया। और यहां तक कि महारानी कृतज्ञति भगवान को भी अपशब्द कहने लगी। और इन वचनों को सुनकर महल के निवासियों को बड़ा दुख हुआ। कभी कभी ऐसे होता है जब दिव्य ज्ञान नहीं होता है और कोई भौतिक दुख की अवस्था आती है तो व्यक्ति भगवान को भी कोसने लगता है, नहीं जानता है कि भगवान की ये कृपा होती है। तो इस प्रकार से दोनों ही बहुत दुख की अवस्था में थे। उस समय अंगिरा मुनि को पता चला कि क्या क्या हुआ है, तो अंगिरा मुनि चले आए। इस समय अपने मित्र नारद मुनि को साथ में लेकर आए। अंगिरा मुनि ने जब राजा को देखा तो कहा कि राजन तुम्हारी क्या हालत है, तुम राजा हो, तुम एक सभ्य व्यक्ति हो और ऐसी हालत तुम्हारी। तो राजा ने बहुत याचना की कि मेरे बच्चे को फिर से जीवित कीजिए। तो अंगिरा मुनि ने उपदेश किया कि हे राजन देखो तुम ये अच्छी तरह से जान लो कि जब मैं पिछली बार आया था मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान दे सकता था, परंतु मैंने जान लिया कि तुम इस दिव्य ज्ञान को स्वीकार करने की परिस्थिति में नहीं हो। यदि मैं बोल भी देता इस दिव्य ज्ञान को तुम नहीं समझ पाते कि तुम्हारे हृदय में पुत्र प्राप्त करने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि किसी दूसरी बात को सुनने के लिए तुम तैयार नहीं थे उस समय। वास्तव में ऐसे होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं भोगेश्वरी प्रसक्तानां दया परत चेतसां व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में भोग और ऐश्वर्य के प्रति बहुत तीव्र आसक्ति रहती है तो भगवान की भक्ति करने के लिए जो एकाग्र चित्त चाहिए वो उसके मन में प्रकट नहीं हो सकती। आप देखेंगे भक्त के जीवन में भी कभी कभी ऐसे हो जाता है, या कभी आपके रिश्तेदारों में से कोई व्यक्ति बहुत दुखी अवस्था में है, किसी का देहांत हो गया है और उसके पास जाके आप कुछ भगवद गीता के दो शब्द कहने जाएं तो कभी कभी वो व्यक्ति सुन नहीं सकता है। उसकी मानसिक परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो कोई बात सुने और समझे। तो अंगिरा मुनि ने राजा चित्रकेतु से कहा कि आपकी ऐसी परिस्थिति थी इसलिए मैंने आपको पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कर दिया और आपकी महारानी को पुत्र हो गया। लेकिन याद रखिए उस समय मैंने आपको कहा था कि आपका पुत्र ये आपको हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। तो राजा को याद आया कि हाँ अंगिरा ऋषि ने ऐसे कहा था ये हर्ष शोक होगा ये बच्चा। लेकिन महाराज चित्रकेतु ने सोचा ऐसे क्यों कहा होगा राजा अंगिरा मुनि ने इसलिए सोचा होगा और कहा होगा क्योंकि जब बच्चे का जन्म होगा तो बहुत हर्षित हो जाएंगे और हो सकता है बच्चा जब बड़े हो जाएगा क्योंकि उसके पास इतना ऐश्वर्य है ऊंचा पद है हो सकता है अहंकार के कारण वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, पुत्र न होने से एक पुत्र होना भला, भले वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करे कम से कम पुत्र तो होगा। जैसे कहावत है कि मामा न होने से भला एक अंधा मामा, कम से कम मामा तो है ऐसे कहते हैं। तो उसी प्रकार से वो सोच रहे थे भले आगे चल के पुत्र मुझे थोड़ा बहुत दुख दे ये तो संसार की रीति है तो भला पुत्र हो जाए। अब चित्रकेतु महाराज अंगिरा ऋषि की बातों को याद करने लगे और फिर अंगिरा ऋषि उपदेश करने लगे महाराज चित्रकेतु को और कहने लगे कि देखो जिस प्रकार से बालू के जो कण है, रेती के कण समुद्र में कभी कभी एकत्र आते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस संसार में भी अनेक जीव हैं, वो इकट्ठे आ जाते हैं और तरह तरह के संबंध बना लेते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र शत्रु आदि। लेकिन ऐसे संबंधों की क्या कीमत है? ये सत्य पर आधारित नहीं है, ये केवल एक भ्रम है। और ऐसे आसक्ति में पड़ के जो कि शारीरिक भावना पर स्थित है, वो आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख सुख की सामना उनको करना पड़ता है। जब दुख की अवस्था आती है बहुत विचलित हो जाते हैं, जब अनुकूल कोई परिस्थिति आती है तो बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु ये सब भ्रम है हे राजन। इस प्रकार अंगिरा ऋषि उपदेश करने लगे महाराज को। उधर नारद मुनि पास में थे। नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति के द्वारा उस आत्मा को फिर से शरीर में बुला लिया और शरीर में प्रवेश करके वो आत्मा ने शरीर के बच्चे के शरीर को उठाया। बच्चा उठा, लेकिन इस बार जब बात करने लगा तो बच्चे की तरह नहीं, एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष के समान बात करने लगा। आपने क्यों मुझे बुलाया है? वैसे कौन है मेरे माता पिता? मैं जिस स्थान में जाने वाला था वहां भी मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे हैं। मेरे कितने सारे लाखों जन्म हुए हैं, हर एक जन्म में मेरे कितने सारे माता पिता हुए हैं, तो मेरे सच्चे माता पिता कौन हैं? पिछले जन्म के हैं या उसके पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के हैं या आने वाले जन्म के हैं, कौन है मेरे सच्चे माता पिता? और क्या है इस दुनिया का संबंध जिससे कि हमारे सुख दुख उत्पन्न होते हैं इस जगत में? जिस प्रकार से एक बाजार में जब सोने की पदार्थ ले आई जाती है तो एक आदमी बेचता है, दूसरा खरीद लेता है, और ऐसे अनेक लोग सोने को या किसी दूसरे पदार्थ को खरीदते हैं और बेचते हैं, वही सोना या वही वस्तु हाथ बदलते बदलते रहता है। आज किसका है तो कल उसका है, परसों किसी और का है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर बदल के दूसरे शरीर में चलते रहता है। तो ऐसे समय में ये शारीरिक संबंध से उत्पन्न होने वाले सुख दुख से हम क्यों आसक्त हो जाए? ये केवल मानवीय दुख का कारण है। तो इस प्रकार से छोटा बच्चा भी बोलने लगा और फिर से गिर पड़ा और आत्मा दोबारा उस शरीर को छोड़कर चली गई। उस समय राजा चित्रकेतु और महारानी कृतज्ञति ये होश ठिकाने आ गए। उन्होंने इस तत्व ज्ञान को सुनकर उसको स्वीकार कर लिया और उनका जो शोक था वो भी खत्म हो गया और वो ज्ञान में स्थित होकर फिर से अब शांत चित्त से अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। उधर जिन रानियों ने विष पिलाया था उस बच्चे को, उनको भी बहुत लज्जा हुई, बहुत शर्मिंदा हुई कि हमने बहुत बुरा काम किया, वो भी भगवान की भक्ति में लग गए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शारीरिक संबंध को बनाए रखने से इस संसार के सुख और दुख के बंधनों में हमें फंस जाना पड़ता है। और जब व्यक्ति सुखी होता है वो सोचता है कि मैं हमेशा सुख की अवस्था में रहूं, परंतु ऐसे नहीं होता। जिस प्रकार से जाड़े के मौसम में व्यक्ति सोचे कि यही मौसम यहाँ बना रहे तो नहीं संभव है, गर्मी का मौसम भी आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम सुख का अनुभव कर रहे होते हैं दुनिया में तो दुख भी अवश्य आएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति इन बंधनों से परे हो जाता है और सुख दुख की परवाह न करके इनको सहन करते हुए वो भगवान की भक्ति करता है। और जब सुख दुख बिन बुलाए अपने जीवन में चले आते हैं तो उनके प्रति समभाव रखता है। तो ऐसे समभाव रखने के लिए वो शक्ति कहां से आती है? क्षमी, जो अंतिम शब्द है इस श्लोक का। क्षमी का मतलब है वो क्षमा करता है अन्यों को। वैसे ये क्षमा शब्द जो है ये क्षम धातु से आता है। क्षम का मतलब है सहन करना। तो सहनशील होना और क्षमा करना, इन दोनों चीजों में बहुत गहरा संबंध है। हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते यदि हमारे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है तो। केवल सहनशील व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। तो यदि हमें क्षमावान होना है, क्षमी होना है, तो हमें सहनशील भी होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में क्षमा नहीं होगी तो दुनिया टूट जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। यदि हम हर एक व्यक्ति के हमारे प्रति जो अपराध हुए हैं इसको हमेशा याद रखें और उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करें तो हमारे जीवन कैसे हो जाएगा, नारकीय हो जाएगा। और हर एक व्यक्ति ऐसा सोचता रहे तो कि देखिए क्या होगा दुनिया में। इसलिए दुनिया में ये क्षमा की भावना बहुत बहुत महत्वपूर्ण गुण है। यदि हमें दुनिया को बनाए रखना है तो हमें क्षमा करने सीखना चाहिए। भगवान भी अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि क्षमा ये कितना एक महत्वपूर्ण गुण है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी यमुनाचार्य के उदाहरण को दोहराते हैं। यमुनाचार्य कहते हैं कि भगवान बहुत क्षमी होते हैं, क्षमावान होते हैं। वो उदाहरण देते हैं श्री रामचंद्र का। जब इंद्रदेव ने एक कौड़ी का रूप धारण करके माता सीता के ऊपर अपने चोंच से प्रहार किया तो पहले तो श्री रामचंद्र बड़े क्रोधित हो गए और उस कौवे को मारने के लिए तैयार हुए। परंतु जब कौवे को पश्चाताप हुआ, पछतावा हुआ और उसने आके शरण स्वीकार किया श्री राम का और राम के सामने झुका वो कौवा, उस समय श्री राम ने क्षमा कर दिया। तो यमुनाचार्य कहते हैं कि ये है भगवान के क्षमा करने के गुण। और फिर वो कहते हैं कि श्री राम से भी ज्यादा क्षमा की है श्री कृष्ण ने। वैसे भगवान के 64 गुणों में क्षमावान होना ये भी एक गुण है। तो यमुनाचार्य श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं कि शिशुपाल ने कितना अपमान किया श्री कृष्ण का, केवल एक जन्म में नहीं, तीन जन्म में, तीन जन्म लगातार शिशुपाल जो है वो कृष्ण की निंदा करते रहे, कृष्ण को अपशब्द कहते रहा। शिशुपाल के बारे में महाभारत में वर्णन आता है और श्रीमद् भागवत कहते हैं। चेदी के राजा थे दमघोष और दमघोष की पत्नी थी, रानी थी श्रुतश्रवा। श्रुतश्रवा वसुदेव जी की एक बहन थी। दूसरे शब्दों में वो कौन थी, वो श्री कृष्ण की बुआ थी। इतने निकट का संबंध था श्री कृष्ण के साथ। तो राजा दमघोष और श्रुतश्रवा को एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा दमघोष चेदी राज्य के राजा थे और जन्म के समय उन्होंने देखा कि ये बच्चे का जो शरीर है बड़ा अद्भुत विचित्र है। क्या विचित्र बात थी इस बच्चे में, इसके चार हाथ थे और तीन आंखें थी। तो और इतना ही नहीं, जब बच्चे का जन्म हुआ तो गधे की तरह वो आवाज करने लगा। गधा जैसे आवाज करता है ना, वो अशुभ माना जाता है। साधारण बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन शिशुपाल गधे की तरह आवाज करने लगा। तो दमघोष महाराज और श्रुतश्रवा महारानी ने सोचा कि बहुत अशुभ है, ये विचित्र बच्चा है, इसको त्यागना चाहिए। और उस बच्चे को त्यागने ही जा रहे थे कि उस समय एक जिन्न वहां पर आया। जिन्न मतलब एक भूत होता है। तो जिन ने आकर कहा कि नहीं, इस बच्चे को आप त्यागे नहीं, क्योंकि आगे चल के ये बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होगा। इतना शक्तिशाली व्यक्ति होगा कि एक व्यक्ति के सिवाय कोई उसको हरा नहीं पाएगा। तो ऐसी बात कहकर चुप हो गया। अब दमघोष राजा महारानी थोड़ी ऐसे बात संतुष्ट हो सकते, और पूछना चाहते थे कि क्या आगे बताओ कुछ और। तो फिर वो जिन कहने लगा कि जिस व्यक्ति के हाथों में हाथों से इसका इसकी मृत्यु होगी, उस व्यक्ति को देख के इसका तीसरा हाथ निकल जाएगा और उसी व्यक्ति के गोद में यदि इस बच्चे को आप बैठाओगे तो उसके जो अधिक दो हाथ हैं वो भी गिर पड़ेंगे। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि इसका वध करने वाला व्यक्ति कौन होगा, और ऐसे व्यक्ति को ढूंढने से इसका जो विचित्र स्वरूप है वो भी ठीक ठाक हो जाएगा, साधारण बच्ची की तरह ये दिखाई पड़ेगा। तो बात बहुत जल्दी फैल गई कि चेदी राज दमघोष का एक पुत्र हुआ है जिसकी चार हाथ है और तीन आंखें हैं। तो जगह जगह से राजा महाराजा आने लगे बच्चे को देखने के लिए, और राजा दमघोष ने हर एक जो भी राजा आता था उसकी गोद बच्चे को रख लिया, परंतु बच्चे के दो हाथ गिरे नहीं, न तीसरा आंख चला गया, वैसे के वैसे रहे। तो ऐसे काफी समय बीत गया और उस समय कृष्ण और बलराम ने सोचा कि चलो हमारे चचेरे भाई को जाके मिल देते हैं। तो वहां गए और उस समय श्रुतश्रवा ने बच्चे को कृष्ण की गोदी में रखा, और जैसे ही रखा तो क्या हुआ, तीसरा आंख निकल गया और दो हाथ भी निकल गए। तो इससे ये स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट हुआ, कि श्री कृष्ण ही है जो शिशुपाल का वध करने वाले हैं। अब माँ की क्या दशा होगी, तो माँ ने कृष्ण से कहा तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, देखो तुम मेरे बच्चे को मारना नहीं। तो कृष्ण ने कहा मैं 100 बार क्षमा करूंगा इसको, तो उसके बाद तुम मुझे मारना पड़ेगा। और फिर ऐसे ही हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने बार बार शिशुपाल के अपमानों को सहन किया, क्षमा किया। जिस प्रकार से ऐसे कहा जाता है कि जब अब शेर बादल के गर्जन को सुनता है तो खुद गरजने लगता है, लेकिन जब साधारण कोई छोटे मोटे पशु होते हैं जैसे कोई शिलाल होता है, कुत्ता होता है, कोई भौंकता है, तो शेर थोड़ी परवाह करता है। उसी प्रकार से ऐसे छोटे मोटे कितने लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। भगवान तो प्रभावित नहीं होते हैं, परवाह नहीं करते ऐसे लोगों की। तो भगवान ने भी शिशुपाल के अपमान भरे शब्दों को, दुर्वचनों को ज्यादा गंभीरता से दिया नहीं, क्षमा करते रहे, ठीक है कहने दो। लेकिन राजसूय यज्ञ में वो सीमा पार हो गई। शिशुपाल ने राह देखा कि कब अच्छा मौका आएगा, और क्योंकि शिशुपाल कृष्ण से द्वेष करते थे, युधिष्ठिर महाराज से भी द्वेष करते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। तो राजसूय यज्ञ में जब ये प्रश्न उठा कि अगर पूजा करके किसको सम्मानित करना चाहिए, तो पांडवों में से एक सहदेव ने उठकर कहा कि श्री कृष्ण ही योग्य है इस अग्र पूजा को स्वीकार करने के लिए। सहदेव ने कृष्ण का गुणगान किया और वहां उपस्थित जितने भी ऋषि मुनि थे सब ने अपनी सहमति व्यक्त की और श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो गई। और जब अग्र पूजा हुई उसके बाद शिशुपाल उठे और बहुत अपशब्द कृष्ण के बारे में कहने लगे, कृष्ण को तरह तरह की गालियां देने लगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि शिशुपाल ने अग्र पूजा होने के पहले क्यों नहीं कृष्ण की निंदा की, जब सहदेव ने कृष्ण का नाम लिया तुरंत उस समय विरोध करना चाहिए था शिशुपाल को, अग्र पूजा समाप्त होने तक क्यों राह देखा शिशुपाल। तो वो कहते हैं कारण ये है कि शिशुपाल युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ को नष्ट करना चाहते थे। यदि अग्र पूजा के पहले ही वो विरोध करते
तो किसी दूसरे ऋषि को बिठाया जाता अगर पूजा के लिए, तो राजसूय यज्ञ अच्छी तरह से हो जाता तो शिशुपाल का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, इसीलिए वो रुका। जब अग्नि पूजा समाप्त हुई तब उठ के बहुत कुछ कहने लगा श्री कृष्ण के बारे में। उधर भीमसेन अर्जुन आदि बैठे थे, वो सहन नहीं कर पाए, अपने तलवार लेकर हाथ में खड़े हुए, लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने इशारा किया और अपने, जब शिशुपाल बहुत आगे बढ़ता गया अपने गालियों में, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और बड़े अच्छे ढंग से, आसानी से, मीठे ढंग से गर्दन काट दी। और इस प्रकार से शिशुपाल की गर्दन काटी कि एक बूंद भी खून नहीं गिरा। और ऐसे बताया जाता है कि यदि श्री कृष्ण ने उस समय ऐसे नहीं किया होता तो भीमसेन अर्जुन और अन्य जो राजा थे वहां जो कृष्ण के भक्त थे, अवश्य उन्होंने अपने तलवार उठाया होता और बहुत भीषण युद्ध वहां हुआ होता, और ऐसे युद्ध होने के कारण बहुत खून इधर उधर बिखर जाता तो सारे यज्ञ स्थल जो है वो दूषित हो जाता, तो राजसूय यज्ञ नहीं हो पाता ऐसे दूषित स्थान में। तो श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि वहां कोई खून बहे। तो इसके पहले कि भीमसेन अर्जुन आदि कुछ करें, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ के शिशुपाल का वध कर दिया। तो ये प्रश्न उठ सकता है, श्री कृष्ण की भी तो कोई क्षमा की सीमा थी ना? इसका उत्तर ये है कि श्री कृष्ण जब शिशुपाल का वध किया तो ये वध करना भी श्री कृष्ण की क्षमा का कार्य ही है, क्योंकि एक ऊंचा स्थान प्रदान किया भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को, मुक्ति की अवस्था प्रदान कर दी। हतारी गति नायक कहा, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि भगवान का एक गुण होता है, जब अरि किसी शत्रु का वो की हत्या करते हैं उनको एक श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण का एक गुण है, नाम है हतारी गति नायक कहा। अपने शत्रुओं के ऊपर भी ऐसे क्षमा करते हैं, ऐसे दया करते हैं कि उनको मार के भी एक श्रेष्ठ स्थान या गति प्रदान कर देते हैं। तो ये है श्री कृष्ण की क्षमा भावना, उनकी कृपा भावना। तो भक्त लोग भी भगवान के गुणों को कण मात्र स्वीकार करते हैं, उनमें भी गुण देखे जाते हैं, बल्कि जहां तक क्षमा की भावना आती है, भक्तों के अंदर जो क्षमा की भावना दिखाई पड़ती है वो भगवान से भी ज्यादा है। भगवान से भी ज्यादा कृपालु भगवान के भक्त होते हैं। हरिदास ठाकुर के प्रति जब मुसलमान सैनिकों ने बहुत प्रहार किया, जगह जगह अनेक बाजारों में जाके चाबुक से उनके ऊपर प्रहार किया गया, तो हरिदास ठाकुर के हृदय में बिल्कुल द्वेष की भावना उनके प्रति नहीं थी, केवल बार बार वो क्षमा याचना करने लगे भगवान से कि इनको अब क्षमा कीजिए, इनको दंड नहीं दीजिए। ये है भक्त की भावना। भक्त की क्षमा करने की भावना की कोई सीमा नहीं रहती है। उसी प्रकार से अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि ने तो अम्बरीश महाराज को जान से मार डालने का प्रयत्न किया था, और अम्बरीश महाराज का कोई दोष भी नहीं था। अम्बरीश महाराज ने तो पूरे सम्मान से व्यवहार किया था दुर्वासा मुनि के प्रति, बहुत आदर सत्कार से उनका स्वागत किया था, परंतु दुर्वासा मुनि ने क्रोधित होकर महाराज अम्बरीश को मार डालना चाहा, तो उस समय भगवान के सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा किया, और जब तक दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में आके क्षमा याचना नहीं की तब तक सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा नहीं छोड़ा। उस समय अम्बरीश महाराज का व्यवहार कैसे हुआ? अम्बरीश महाराज ने तुरंत क्षमा कर दी, बल्कि अम्बरीश महाराज को लगा कि अरे रे, ये कैसे हो सकता है, ये इतने बड़े ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं और योगी हैं, और मैं एक साधारण क्षत्रिय हूं, एक राजा हूँ, विद्युत वृत्ति में लगा हुआ हूँ और ऐसे एक बड़े ऋषि मेरे सामने आके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो अम्बरीश महाराज को बल्कि बुरा लगा कि मैं क्षमा की बात तो दूर है, मैं इस योग्य भी नहीं हूं ऐसे क्षमा करने के लिए। तो ये भावना अम्बरीश महाराज के अंदर थी। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज के प्रति उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कितना अत्याचार किया, कितना प्रहार किया, फिर भी प्रहलाद महाराज के हृदय में हिरण्यकश्यप के प्रति कोई भी द्वेष की भावना नहीं रही। बल्कि जब नरसिंहदेव ने प्रकट होके प्रहलाद हिरण्यकश्यप क्षमा कीजिए उसका वध किया, तो प्रहलाद महाराज ने क्या चाहा? हे पिता, हे भगवान, मेरे पिता पिता को आप क्षमा कर दीजिए। ये थी प्रहलाद महाराज की भावना। तो देखिए ऐसे भक्तों के गुण होते हैं। तो हमारे जीवन में भी बार बार हमें ऐसे अनुभव करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति हमारे साथ ऐसे व्यवहार करता है जिसे हमें दुख पहुंचता है। ऐसे आप सबके जीवन में अनुभव हुआ है और होता है, नहीं होता है? होता है, बार बार होता है, प्राय हर दिन होता है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है जिसके कारण हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। भले हमारा छोटा बच्चा क्यों ना हो, बड़ा बच्चा क्यों ना हो, हमारे निकट का भी व्यक्ति क्यों ना हो या कोई दूर का व्यक्ति क्यों ना हो, इस संसार में बारंबार ऐसे परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ेगा और करते रहते हैं हम, और फिर हमारे हृदय में चोट पहुंच जाती है और उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, इस व्यक्ति ने ऐसे क्यों कहा मुझसे। और हम उसको याद रखते हैं, कई बार सालों तक हम भूलते नहीं है। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान ने स्वयं उदाहरण दिया है, हमें क्षमा कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, इतने गंभीरता से चीजों को नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे बारे में कुछ भला भुला बोल लेता है वो भूल जाएगा कि मैंने बात किया था ऐसे, लेकिन हम नहीं भूलते, इसलिए दुखी हम रहते, वो बेचारा भूल के वो तो मुक्त हो जाता है, वो अपना जीवन आगे चलाता है, वो हम उसको चबाते रहते उस बात को, उसने ऐसे कहा ऐसे कहा, इसलिए भूल जाना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक संत ने कहा है और यह पहले भी सुन चुके हैं कि हमें दो चीजों को भूल जाना चाहिए हमेशा और दो चीजों को याद रखना चाहिए हमेशा। तो वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमें भूल जाने चाहिए? एक, जो हमने अन्यों के प्रति कोई अच्छा काम किया है तुरंत भूल जाना चाहिए, और हमने जो या दूसरों ने जो हमारे प्रति कोई गलत काम किया है उसको भी तुरंत भूल जाना चाहिए। और किस चीज को याद रखना चाहिए बताइए? किसी ने हमारी भलाई की तो वो हमेशा याद रखना चाहिए, और बात क्या याद रखनी चाहिए? हमने किसी की बुराई की वो भी याद रखना चाहिए। जब हम याद रखते हैं कि हमने इसकी बुराई की, इसका मतलब है हमारे अंदर पछतावा होता है, तो पछतावा होना आवश्यक है। यदि हम किसी का भला बुरा कुछ कह डालते हैं और हमें कुछ लगता ही नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है हमने गाली दे दी इसको चलता है कोई बात नहीं, पछतावा होना चाहिए, इसलिए वो याद रखना चाहिए कि अरे मैंने ऐसे कैसे किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, उसको याद रखना चाहिए, पछतावा होना चाहिए, ये पछतावे की भावना है। और दूसरे ने जो हमारे प्रति भला किया है इसका मतलब है ये कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, हमें आभारी होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरे प्रति एक अच्छा काम किया है। उस प्रकार से जब दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति कोई बुरा काम करता है या अपशब्द कहता है तो हमें भी नम्रता का प्रदर्शन करते हुए क्षमा क्षमा की भावना रखनी चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, भूल गया। इसलिए क्षमा की भावना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और हम जब दूसरों को कोई भलाई करते हैं उसको भी भूल जाना है इस दृष्टि से कि हम नम्र हैं, हमें नम्र होना चाहिए, हम किस योग्य हैं, हम क्या भला कर सकते हैं किसी दूसरे का। अगर हुआ भी है तो भगवान ने हमें निमित्त बनाया, इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। तो देखिए इन चार चीजों में चार गुण प्रकट हो जाते हैं, नम्रता, क्षमा होने की भावना, पश्चाताप होना और आभारी होना। तो मनुष्य समाज में जब तक ये चार चीजें नहीं होंगी मनुष्य समाज शांतिपूर्वक नहीं रह पाएगा। इसलिए अभी हमारे दैनिक जीवन में भी हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। अगली बार कोई भला बुरा कुछ दो शब्द कह देता है हमको तुरंत हमें एक एक ऊपर नहीं आना चाहिए, अरे तुरे की बात नहीं होनी चाहिए, इसने मुझे ऐसे कहा तो मैं उल्टा जवाब इसका इस तरह से दूंगा, ये स्वाभाविक भौतिक वृत्ति है हमारे अंदर अचानक चली आती है, इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कहा, मैं भी इसका उल्टा जवाब दूंगा। तो ऐसे जवाब देते देते सारा जीवन बीत जाता है, चेतना खराब हो जाती है। और ऐसे खराब चेतना में हम भगवान के ऊपर मन को केंद्रित नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा विचलित व्यक्ति हम ही होते हैं जब हम क्षमा नहीं करते तब। इसलिए आज से हम सबको अभ्यास करने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी 10 सेकंड हम बोलना बंद करेंगे, 15 सेकंड, और आप सबको सोचने के लिए कहेंगे कि याद करिए कि आपके मन में अभी तक कौन सा घाव है, कि किस व्यक्ति ने आपके प्रति क्या कहा था, क्या बोला था, और अभी आप भगवान के सामने बैठे उनको क्षमा करने की कोशिश करिए। पहले जो दांत रगड़ते थे उसके नाम सुनकर अभी वो नहीं रोना चाहिए, ठीक है, क्षमा कर दीजिए। अभी दर्शन करिए भगवान का और याद करिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस व्यक्ति के मन में जो मेरे द्वेष है इसको निकाल दीजिए, मैं क्षमा करना चाहता हूँ उस व्यक्ति को। हरे कृष्णा। कोई व्यक्तियों के नाम याद आए, लंबा लिस्ट था या छोटा लिस्ट था, थे ना कोई तो नाम थे ना। तो ऐसे हमें अभ्यास करना चाहिए और ऐसे प्रयास मात्र से भगवान प्रसन्न रहते, भले हमारे लिए कठिन हो लेकिन हमारे प्रयास को देखकर भगवान ऐसे गुणों का अनुशीलन हमारे हृदय में करवाएंगे। ये है सत्य जीवन, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातों में क्षमा कर देना चाहिए। जान सको जीवन में बहुत सी चीजें आएंगी जाएंगी, जाने दो, और अब ये सोचना चाहिए बल्कि इससे ज्यादा हमें मिलना चाहिए था, ये आदमी बड़ा कृपालु है इतना ही देकर गया मुझे, मिलना तो बहुत था लेकिन इतना ही मिला। तो ऐसे क्षमा ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, इसका अनुशीलन हमें करना चाहिए। तो शुद्ध भक्तों में ऐसे सारे गुण दिखाई पड़ते हैं। अगली बार 14वें अध्याय में जो वर्णित गुण है उनकी चर्चा हम करेंगे। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।